أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، نبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المذمومين، لا سيما بقية الله من الرضين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: واحفظوا ألسنتكم قرب مبارک شعبانیہ کی تشریح بیان ہو رہی ہے. رسول خدا کے اس جملے تک ہم پہنچ گئے جس میں آپ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو. اس سے پہلے سیرے ارحام کے بارے میں گفتگو تھی کہ وسیم احرام کو رشتے داروں سے سیرے رحم کرو، ان کے ساتھ مل کر برقرار رکھو، رشتوں کو باقی رکھو. اس کے فوراً بعد رسول خدا فرمانے کے بعد کنٹرول رکھو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو. مواعظ العددیہ، المواعظ العددیہ ہے طلحہ مشکینی کی کتاب ہے، علم اخلاق سے مربوط ہے. اس کتاب کے اندر ایک روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو زبان باہر آ کر انسان کے سر سے، انسان کے کانوں سے، انسان کے ہاتھوں سے اور انسان کے پاؤں سے یہ سوال کرتی ہے کہ تمہارا حال کیسا ہے، خیریت دریافت. زبان صبح اٹھ کر دوسرے اعضاء بدن سے، پاؤں سے پوچھتی ہے آپ خیریت سے ہیں، ہاتھ سے پوچھتی ہے آپ خیریت سے ہیں، آنکھوں سے پوچھتی ہے آپ خیریت سے ہیں. سب سے زبان جو ہے ان کی خیریت دریافت کرتی ہے. تو وہ سب ایک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ ہم اسی وقت ٹھیک رہ سکتے ہیں جب تو اجازت دے ہمیں کہ ہم ٹھیک رہیں. تو اجازت دے گی تو ہم ٹھیک رہیں گے. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنی گڑبڑ ہوتی ہے وہ تیری وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اس کا جو بھگتان بھگتنا پڑتا ہے وہ ہم کو بھگتنا پڑتا ہے. چلتی زبان ہے، مار سر پر پڑتی ہے. چلتی زبان ہے لیکن نقصان ہاتھوں کو ہوتا ہے، چلتی زبان ہے نقصان آنکھوں کو ہوتا ہے، چلتی زبان ہے نقصان کانوں کو ہوتا ہے. تو وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ایک زبان ہو کر کے اگر تو ہم کو گزارے اس بات، تو اگر چھوٹ دے ہمیں اس بات کی کہ ہم اچھے رہیں تو ہم اچھے ہیں، ورنہ اگر تو اگر ہم کو اچھا رہنے نہ دے تو ہم اچھے نہیں رہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ تیرا کام یہ ہے کہ تو چلتی ہے اور تو رہتی ہے دل میں ہے. منہ کو بل سے تعبیر کیا گیا تو بل میں رہتی ہے، دل سے باہر اگر کچھ کہہ کے پھر بل میں چلی جاتی ہے، لیکن ہم تو بل میں نہیں رہتے، ہم تو بل کے باہر رہتے، تو نقصان ہم کو اٹھانا پڑتا ہے. تو اگر تو چاہے تو ہم اچھے رہ سکتے ہیں، اگر تو نہ چاہے تو ہم اچھے نہیں رہ سکتے. ہماری خیریت تیرے چاہنے میں، تو اگر چاہے کہ ہم اچھے رہیں تو ہم اچھے رہ سکتے، تو اگر چاہے کہ ہم اچھے نہ رہیں تو ہم اچھے نہ رہ سکتے. گناہان زبان کے تعلق سے مستقل کتاب ہے، تقریباً 300 صفحے پر مشتمل، جس کا نام ہی گناہان زبان ہے، زبان سے مربوط گناہ. مرحوم فیض کاشانی علیہ الرحمہ، ان کی ایک کتاب ہے البہجت الفیضا، اخلاق سے مربوط ہے. اس میں انہوں نے زبان سے متعلق 18 عمل انہوں نے بیان کیے ہیں جو یا تو مکروہ ہے یا حرام ہے. انہوں نے کہا، انہوں نے 18 عمل کو اس میں البہجت الفیضا میں گنوایا ہے جو زبان سے سرزد ہوتے ہیں اور وہ عمل یا تو مکروہ ہیں یا حرام ہیں. और गुनाह कबीरा है, जैसे झूठ, गीबत, ये तमाम जबान के गुनाह हैं, और भी कई गुनाह हैं। एक मुस्तकिल अर्ज किया, एक मुस्तकिल किताब 300 सफ़े की लिखी गई है, गुनाह उसका नाम ही गुनाह है ज़बानी, ज़बान से जो गुनाह अंजाम पाते हैं, 300 सफ़े पर मुस्तकिल किताब है। गीबत, गीबत के तरफ से कहा गया है कि ये जिना से भी बदतर है। तीसरी चीज बोहतान, बोहतान भी इंसान जबान से ही लगाता है, और बोहतान कह रहे हैं कि आजकल बहुत ही फैशन बन गया है बोहतान लगाने का। बोहतान यानी इफ्तरा बर्दाजी करना, तोहमत लगाना किसी के ऊपर। क्या तोहमत लगाना है? अब मसलन हमारे शहर के हालात के अतबार से ये तोहमत लगाते कि ये शख्स दुश्मन अली, ये शख्स मुफस्सिर है, ये शख्स शिया वहाबी है, इस किस्म की बातें करते अपने शहर में। तो ये तोहमत है, बोहतान है, तोहमत बांधना ये सबसे बड़ा गुनाह है, गीबत से भी ज़्यादा बढ़कर है। और ये किस चीज़ से अंजाम पाता, बोहतान किस चीज़ से लगाता इंसान? जबान का इस्तेमाल करके बोहतान लगाता इंसान, लोगों को जो तकलीफ, यानी जख्म जबान, फारसी में कहते हैं जख्म जबान, यानी वो जख्म जो जबान से लगाया जाता है। हम लोग जब इब्तदा में अदबियात पढ़ रहे थे, अरबी अदबियात, तो अरबी अदबियात के काफ़ी मशहूर असातिज़ा क़ौम में हैं। पहले गुज़श्ते पुराने ज़माने में एक थे मुदर्रिस अफ़ग़ानी, कमांड था उनको अदबियात अरब पर, अरबी ग्रामर पर बहुत ज़्यादा कमांड, हर दर्जा कमांड। उनके कई शागिर्द निकले, उनके एक शागिर्द थे आगा हयाती, आगा हयाती, मैं उनसे शरह मुल्ला जामी किताब है उसका इब्तदाई हिस्सा कुछ पढ़ रहा था, काफ़ी लोग उसमें आते थे, 25-30 लोग उसमें आते थे। तो उसमें कलमा, कलमे की तारीफ, कलमा यानी वो नहीं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली मन अल्लाह, वो कलमा नहीं, कलमा यानी अरबी ज़बान में कलमे का जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो क्या है, उसके बयान के ज़िम्न में कह रहे थे कलमा यानी वो चीज़ जो इंसान के अंदर असर, तासीर डाले, इंसान के ऊपर तासीर करे, इंसान के ऊपर असर करे, उसको कलमा कहते हैं। तो इसके पस मंज़र में एक वाक़िया सुनाए थे, बहुत ही दिलचस्प वाक़िया है, वो ज़ख्म ज़बान से मुतालिक है, यानी इंसान अगर अपनी ज़बान को यानी ज़ख्म लगाने का हथियार बना ले तो किस हद तक नुकसानदेह हो सकता। तो कलमे के ज़िम्न में, क्योंकि कलमा का मतलब यह है कि वो चीज़ जो असर डाले, सामने वाले के ऊपर असर करे, उसको कलमा कहते हैं। उसके ज़िम्न में ये वाक़िया सुनाए थे, कई मरतबा मैं यहाँ हैदराबाद में कई लोगों को सुना चुका हूँ ये वाक़िया। वो ये कि एक शेर की दोस्ती एक आदमी से हो जाती है, एक आदमी की दोस्ती एक शेर से हो जाती है, शेर से हो जाती तो इस हद तक हो जाती दोस्ती के एक दिन वो आदमी शेर को अपने घर खाने की दावत देता है कि भाई घर पे आइए, आपके लिए बेहतरीन सूप बना के देंगे, आप वो सूप से इस्तेमाल कीजिए। तो शेर भी बोलता है आदमी हमारी ज़ियाफ़त कर रहा तो लिहाजा चलिए ला के सूप पी लेते हैं। तो वो शेर आ गया है ये शख्स के घर, जब घर पहुंचा तो दस्तरखान बिछा हुआ है, कटोरे में, बड़े कटोरे में सूप रखा हुआ है शेर के लिए, आमादा है तब फेंकते हैं। तो शेर की उम्र ज़्यादा थी तो जबड़े उसके लटक गए थे, तो जब शोरबा वो सूप पीना शुरू किया तो इस तरफ से शोरबा टपकना शुरू हो गया, इधर से टपकना शोरबा, इधर से टपकना। तो वो जो आदमी था उसकी बीवी देखी वो चीज़, देख के वो बोली आदमी अजब है, दोस्ती करे नहीं, करे तो फिर एक ऐसे शेर से करे जो बुढ़ा है जिसको खाना भी नहीं आता सही, शोरबा पूरा इधर से टपकना इधर से टपकना। तो शेर को ये बात बहुत बुरी लगी, बहुत असर भी आया बात का, कलमा तासीर रखता, बोलते ना असर करता कलमा, ये बात का असर नहीं है, नाराज होकर उड़ गया दस्तर खाने से, फौरन उठ के बाहर निकल गया, घर के बाहर चला गया। वो आदमी बुलाने कहाँ 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 चले गए भाई आप, निकल के अब जंगल की तरफ जाना शुरू कर दिया। जाते जाते अब ये शख्स पीछे जा रहा, उस कह रहे भाई फला ये वो, पुकारा शेर को, शेर जंगल में चला गया। ये भी शेर के पीछे पहुंचा, क्या हुआ क्या हुआ, एक बोल रहा ना खामोश है शेर। जब जंगल में काफी पहुंच गया तो शेर बोला के भाई वहाँ एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई है, वो कुल्हाड़ी लो मेरे सर पे मारो, सर पे मार दो। अरे कैसा मारो, आप मेरे दोस्त हैं, क्या हुआ क्यों मारो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, आप सिर्फ एक काम ये करो कि कुल्हाड़ी उठाओ और मेरे सर पे मारो। ठीक है इसरार करा दो, मुझे उठा के कुल्हाड़ी उसके सर पे मार दी, मारते जख्मी होके शेर गिर गए, मरा नहीं, जख्मी हो गया, सर पे मार लगी जख्मी होके गिर गए। गिर के खून बहना, बहते हुए खून के साथ बोल रहा गया आप 15 दिन के बाद आइए, 15-20 दिन के बाद आइए, फिर आगे बात करेंगे जो भी करना। वो आदमी चले गया वापस अपने घर। 15-20 दिन के बाद दोबारा जब शेर के पास आया तो शेर देखे तो सेहतमंद है, अच्छा टहल रहा है इधर से उधर, तंदुरुस्त है। तो शेर उससे कहने लगा कि आपने उस दिन जो जख्म मुझे लगाया था ना कुल्हाड़ी से, वो जख्म तो भर गया, लेकिन वो जख्म जो आपकी बीवी ने जबान से लगाया था वो अब तक नहीं भरा, वो जख्म अब तक हरा है। तो जख्म जबान जो लगाता ना इंसान, वो जख्म कभी भरता नहीं। इंसान गौरव में किसी को कुछ बोल देता, मखसूस खानदानों में बहुत ज़्यादा होती है बात, मखसूस जो सास, सास की जबान मशहूर है फारसी में, सास की जबान यानी सास की जबान नश्तर रहती, नश्तर की तरह चलती, दिल को काट देती, मशहूर है सास की जबान, जबाने शौहर मादर, शौहर मादर यानी शौहर की मादर यानी सास, सास की जबान नश्तर की तरह चलती। और वो एक मरतबा जबान से कोई बात निकल गई इंसान की है तो फिर वो जख्म भरता नहीं करता, जख्म हमेशा हरा। खुद आयतुल्लाह अहमदी मियां जी लिख रहे हैं कि एक ज़माने में किसी शख्स ने उनसे कुछ बात कह दी थी जिससे उनको काफ़ी तकलीफ पहुंची, तो रह रहे के वो बात याद आती थी। अब क्या बात कही थी उसने, वो तो नकल नहीं किए, लेकिन रह रहे के वो बात जहन में आती थी कि वो शख्स मुझे ये बात बोला था कई साल पहले, और कह रहे कि मैं उसको माफ भी कर दिया, उसको मैं कई बार माफ भी कर दिया, भाई आप वो जो बोले थे मुझे मैं माफ कर दिया, लेकिन रह रहे के वो जहन में आते रहता क्या बात बोल दिया मैंने उस वक्त, माफ कर देने के बावजूद भी कह रहे हैं अभी भी मैं कह रहा हूं मैं उसको माफ कर दिया। जब ये खिताब कर रहे थे उस वक्त भी कह रहे हैं अभी भी मैं कह रहा हूं मैं उसको माफ कर दिया, आप लोग गवाह रही है मैं उसको माफ कर दिया, लेकिन कह रहे हैं कि रह रहे के वो बात याद आते रहती अक्सर कि क्या बात बोल दिया हमने जो दिल से बोलने के लिए तैयार नहीं। तो इंसान सोच समझ के बात करना, जबान को जो हरकत देना सोच समझ के हरकत देना, सोच समझ के हरकत देंगे तो एक बात इंसान की जबान से निकल गई दूसरे इंसान के दिल पर उम्र भर नक्श रहती, वो उम्र भर याद रहती फला जमाने में फला बात बोले थे अब तक याद है वो बात मुझे। होता इंसान एक बात बोल देता मगर सोचे समझे कि, लेकिन जिसके जिसको बोलता और जिसके लिए बोलता उसको साल हर साल तक उसका असर बाकी रहता, भुला नहीं सकता इंसान, आगे चल के असर होगा। कि बहुत से लोग माफ नहीं किए जो उनके ऊपर बहुतान लगाए तोहमत बांधे, बहुत से लोग उनको माफ नहीं किए, बगैर माफ करेंगे वो इस दुनिया से चले गए। कह रहे हैं कि बहुतान और तुहमत, क्योंकि वाफसु अल से रखें तुम अपनी जबानों की हिफाजत करो, जबानों को कंट्रोल में रखो, जबानों को जबानों पर काबू रखो। इसलिए कि इससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी का दिल ना टूट जाए तुम्हारी जबान के इस्तेमाल से। सख में जबान लगाते मत फिर, क्योंकि वो जो घाव तलवार से, तीर से या दूसरे असलहे से जो घाव लगता वो भर सकता, लेकिन जबान से लगा हुआ घाव भर नहीं सकता। हमेशा हरा रहे, हमेशा ताज़ा रहे। और एक जो गुनाह जबान से हो सकता वो लोगों के रास फाश करना। एक आदमी बोला भाई ये रास की बात है, सिर्फ आपसे कह रहा हूँ, आप आगे किसी और से मत कहिए। वही बात वो सबसे कह लेते फिरते, हमारी आदत है जिस बात के ताल्लुक से ताकीद कर देना है ये बात रास की है भाई, ये बात किसी को नहीं मालूम होनी चाहिए। अब वही बात सबको बोल लेते फिरते, पेट में दर्द, मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ, ये बात किसी से कहना नहीं होती, पेट में दर्द शुरू आओ, पेट में दर्द शुरू नहीं, फौरन जाके कहीं ना कहीं उगल देते, उगलते पेट में दर्द होता। मैं रास पास करना गुनाह कबीरा है, किसी का रास पास नहीं कर सकते आप। तजस्सुस करना गुनाह कबीरा है, तजस्सुस कर रहे ऐब तलाश कर रहे हो। ला तजस्सुसु कुरान की आयत है सूरह हुजरात में, ये तो लोगों के तजस्सुस में, तजस्सुस से हराम ये नहीं है। ऐसी बातें, एक तो तजस्सुस, वो तजस्सुस जो बेफायदा है अगर आप जान लें वो बातें, बहुत सी बातें ऐसी करते हैं हम लोग, अगर मैं आपके बारे में जान लूँ तो मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है ना आपके लिए कोई फ़ायदा है, तो क्यों जानूँ ऐसी बात जो ना मेरे लिए फ़ायदा है ना आपके लिए फ़ायदा है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका जान लेना एक दूसरे के लिए नुकसानदेह है। इससे पहले भी अर्ज़ किया था, अगर बिलफर्ज कोई शख्स मेरी इबादत किया, मुझे ये किसी के ज़रिए से मालूम हो गया कि फला शख्स मेरी इबादत किया तो मुझे खुशी होगी, उस शख्स के ताल्लुक से मेरे दिल में बुराई आ जाए, तो बेहतर क्या है मुझे मालूम ही ना हो कि किसी ने मेरी इबादत की या मैंने किसी की इबादत की, मैं किसी की इबादत किया और उसको मालूम हो गया कि मैंने उसकी इबादत की, तो रंजीदा होगा ना, तो बेहतर है कि। तो ये बीच के जो अफराद रहते हैं उनका काम है कि बिलफर्ज मैं आपके सामने किसी की गीबत कर दिया, अब आपका काम है कि जाके उसको ना बोले कि फलां आदमी आपकी गीबत कर रहा था, खामोश रहे, क्योंकि इस बात का पता नहीं चलना ही बेहतर है ना। अगर पता चल जाए किसी को तो रंजीदा होगा, अफसोस करेगा कि भाई वो हमारी गीबत कर रहा। तो बहुत सी बातों का पता न चलना ही बेहतर है, और वो पता किसे चलता, जबान से चलता। इसको बोलते हैं अपनी मोटी जबान में कहते हैं इधर की उधर लगाना, इधर की सुनना उधर लगाना, उधर की सुनना इधर लगाना। फारसी में सुखनचिनी बोलते हैं इसको, सुखनचिनी। और अलैकुम सलाम, और उर्दू अरबी में नम्मामी कहते हैं, नम्मामी। नम्मामी यानी इसकी सुने उधर जाके लगा दिए, उसकी सुने उधर जाके लगा, इससे लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते, फसाद हो जाता, माशरे तबाह हो जाते। भाई जहाँ सुने अगर कोई बात सुने जहाँ की, वहीं छोड़ के उड़ जाओ, अगर यहाँ सुन के वहाँ, वहाँ सुन के वहाँ, इससे माशरे में बिगाड़ पैदा हो जाता, लड़ाइयाँ झगड़े फसाद पैदा हो जाता। तो लिहाजा बेहतर क्या है, बेहतर यह है कि चुप रहो, जबान को काबू में रखो। رسول خدا فرماتے ہیں محفظو السنتکم، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ روایت میں ہے کہ جو بات ہماری زبان سے نکلتی وہ ہمارے عمل میں حساب کی جاتی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو بھی بولتے رہے، یعنی جو منہ کو آیا بولتے رہے ہم، اس کا حساب کتاب نہیں ہے۔ ہر بات جو زبان سے نکلتی وہ عمل ہے، اور وہ عمل لکھا جا رہا ہے، اور جو عمل ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا ایک زبان کی ایک آفت کیا ہے، بےہودہ گوئی۔ بےہودہ گوئی یعنی لوگوں کو بس بات کرنے کی عادت ہی رہتی، بس بات کرتے ہی رہتے، بات نہ بات کی تو منہ چلتا ہی رہتا ہوں کا۔ آیت اللہ احمد میاں جی کہہ رہے ہیں کہ میں اتنی کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ نہ بولوں، کیونکہ سکوت خاموشی اختیار کرنے کی تاکید ہے روایتوں میں۔ روایتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ بولنا اگر چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے، بولنا اگر چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے۔ تو علماء کی کوشش یہ رہتی ہے کہ جس حد تک ضروری ہے اسی حد تک بولتے، اس سے زیادہ نہیں بولتے، خاموش رہتے۔ کیوں؟ کیونکہ खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात निकल जाए जबान से तो नहीं निकलनी चाहिए। इसीलिए क्या है, जो ज्यादा बोलता है उसको हिसाब भी ज्यादा देना है। बेहतर है कि ज्यादा ना बोले, कम बोले, जितना जरूरी है बोले। और सबसे अहम बात यह है कि हमारी मुश्किल ये है कि जहाँ बोलना है वहाँ नहीं बोलते और जहाँ नहीं बोलना है वहाँ बोल पड़ते। एक जगह जुल्म हो रहा, बोलना है आपको वहाँ पे, जबान खोलना है आपको, वहाँ पे खामोशी इख्तियार की हुए, जुल्म के खिलाफ खामोश बैठे थे, बोल नहीं रहे, खामोश नहीं। लेकिन एक जगह नहीं बोलना है, एक शख्स ने किसी की गीबत कर दिया, वो दूसरे शख्स को जाके बोलना नहीं है कि फलाने तुम्हारी गीबत की है, खामोश रहना, वहाँ बोल पड़ते फला आपकी गीबत कर रहा था भाई, आपके ताल्लुक से ऐसा बोल रहा था, लड़ाई हो जाती, झगड़ा हो जाता। तो जहाँ बोलना है वहाँ बोलना जरूरी है, और जहाँ नहीं बोलना है वहाँ नहीं बोलना जरूरी है, वाजिब है। नहीं बोलिए, बात जगह बोलना वाजिब है, जुल्म हो रहा आपके सामने बोलना वाजिब है, मुनकर अंजाम पा रहा आपके सामने, कोई एक शख्स गलत काम कर रहा, खिलाफ शरीयत कोई अमल अंजाम दे रहा, वहाँ बोलना वाजिब है आपका, जबान खोलना वाजिब है। वहाँ तो हम खामोश नहीं थे डर के कि भाई अगर हम बोलेंगे तो उन्हें फिर सामने से कुछ बोलेगा, फिर कुछ बात बढ़ेगी आगे, वहाँ खामोश रहते थे। लेकिन लोगों को जब लड़ाने की बात है, इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना, जाके इसकी बात को जाके उसकी तरफ लगा देना, अरे आपके ताल्लुक से फला आदमी ये बोल रहा था, तो अगर ये बात करें हम तो इसमें तो नुकसान नहीं, वो आपस में दोनों लड़ झगड़ के मर जाएंगे, आपका तो कोई नुकसान होने वाला नहीं। वहाँ पे नहीं बोलते, वहाँ पे यानी बोलना बोल पड़ते, खामोश नहीं रहते वहाँ। तो जबान को जो हिफाजत की बात की गई है कि माहिर रमजान में इंसान रोजा रहता, पेट भरा इंसान बहुत ज़्यादा बोलता, जिसका पेट भरा हुआ रहता उसको बोलने की वो हौका रहता। वो एक शायर, मैं समझता हूँ पयाम आज़मी साहब का शेर है, बात करने का हौका है तो मंजन बेचो, पेट में दर्द खिताबत है तो चूड़ा बेचो। बाद लोगों को पेट में खिताबत का दर्द रहता, हमेशा खिताब करना चाहते पब्लिक से, तो बेहतर है जबान को कंट्रोल में रखे इंसान, जबान को कम, जितना कम बोलेगा उतनी खताएं उसकी कम है। रिवायत में जो जितना कम बोलेगा उसकी खताएं और लग्जिशें कम रहेंगी, खताएं लग्जिशें कम रहेंगी तो हिसाब में आसानी होगी, जिसकी लग्जिशें और खताएं ज़्यादा है उसको हिसाब में उतनी देर लगने वाली है, उतना लंबा तूला नहीं हिसाब चलने वाला है उसका। एक वाक़या बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर नकल फरमा रहे हैं, ये वाक़या इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहि सलाम का, जिनकी विलादत कल गुजरी, कि इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहि सलाम के पास एक शख्स आया, आके बोला इजाज़त है मैं आपके सामने बैठूँ, तो हजरत बोले हाँ इजाज़त है, लेकिन इस शर्त पे इजाज़त है कि किसी तीसरे आदमी का नाम नहीं लेना यहाँ पर, बात हम दोनों के दरमियान ही हो, किसी तीसरे आदमी का जिक्र यहाँ पर नहीं छेड़ना, तो आप बैठ सकते हैं यहाँ पर। तो बोला ये तो मुमकिन नहीं है, इजाज़त दीजिए मुझे, तो बोले ठीक है जाइए, नहीं बैठा फिर कुछ, यानी इस इमाम बोलते ये शर्त है, इस शर्त पे अमल करना है तो बैठो यहाँ, अमल नहीं करना है इस शर्त पे तो चले जाओ, शर्त ये रखें कि किसी तीसरे शख्स का जिक्र नहीं होना यहाँ पर, बात हम दोनों की है, दोनों में बात करो या कोई ऐसी बात करो जो किसी के मुताल्लिक ना हो। तो बोला मैं इजाज़त चाहता हूँ, तो बोले बिस्मिल्लाह जाइए जाइए, बैठने की जरूरत नहीं। तो दो शख्स जब बैठे तो तीसरे शख्स के बारे में जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो ऐसी गुफ्तगू होना कि वो गुफ्तगू ना गीबत हो, ना तोहमत हो, ना इधर की उधर लगाने में शुमार हो, ऐसी गुफ्तगू अगर कर रहे हैं तो ठीक है तीसरे शख्स का नाम लीजिए, या तो नाम भी मत लीजिए तीसरे शख्स का। यानी इमाम इस हद तक एहतियात कर रहे हैं भाई तीसरे शख्स का नाम नहीं मत लो, नाम लेंगे तो कुछ ना कुछ बात निकलेगी और कुछ ना कुछ उसकी बुराई हो जाएगी, लिहाजा नाम ही मत लो किसी का, दूसरी बात करो, कोई और बात करो, किसी के मुताल्लिक बात मत करो। ये जो इधर की उधर उधर की इधर लगाना, इसमें बड़े यानी क्या अर्ज करो, इतने वाकयात है इसके पीछे। आप देखिए एक वाकया मेरे को दुदला सा याद है, पूरा याद नहीं है, वो हमारे उस्ताद सुना रहे थे, उस्ताद दादाशी एक उस्ताद थे कौम में, बहुत अच्छे उस्ताद बेचारे असाते उस्ताद थे पढ़ाते, तो वो एक वाकया ये सुना रहे थे कि एक आदमी एक गुलाम को खरीद के लाया बाजार से अपने घर। वो गुलाम की सबसे बड़ी सिफत ये थी कि जबान का धनी, जबान का धनी यानी जबान को कब कहाँ इस्तेमाल करना है, किसको कैसा चढ़ाना है, किसको कैसा उतारना है, किससे कैसी बात करना है, वो बातें अच्छी जानता। तो घर लेके आ गया उसको, लेके आते वो गुलाम क्या किया, गुलाम आके पहला जो काम किया वो शौहर को बोला तुम्हारी बीवी जो है वो दूसरे मर्दों के साथ आना जाना है उसका, तुम जाते ही दूसरा मर्द आ जाता घर। तो उन्हें बोला ये क्या बात है, बिल्कुल ऐसी बात है, तुम जैसे ही घर से बाहर जाते गैर मर्द आना शुरू हो जाते घर। अरे ये क्या बात है, इतने सालों से मुझे खबर नहीं, ज़रा तुम खबर रखते रहो कौन आ रहा कौन जा रहा। अरे ठीक है मैं रखता हूँ। उस तरफ जाके बीवी से बोला कि ये जो आपका शौहर है आप क्या समझ रहे हैं, शौहर सही शरीफ है, जैसे ही बाहर जाता तुम्हारे को छोड़ के दूसरी औरतों से इसके ताल्लुक दूसरी औरतों के पास जाता है। तो वो औरत बोली फिर क्या किया जाए, तो क्या किया जाए, रात में जब ये सो जाएगा सोते ही तुम उसका गला काट दो, नींद में उसका गला काट दो ख़त्म। तो अच्छा होने बोले ठीक है, नींद में गला काट देंगे उसका। उस तरफ से शौहर को जाके बोल दिया आज रात में तुम्हारी बीवी तुम्हारे ऊपर हमला करने वाली है, तुम सोते ही तुम्हारा गला काट देने वाली है। ये बात जाके शौहर को बोल दी, बोलते शौहर क्या किया, सोए जैसा करा, सोया नहीं, सोने की एक्टिंग करा, लेट गया बिस्तर में, लेटते ही वो बीवी चाकू लेके आके सवार हो गई उसके ऊपर, मार देना चाहिए एकदम उड़ गया। उन्हें ये क्या कर रहे, तो दोनों में आपस में फिर तकरार, बहसों तकरार, लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़े में ये हुआ कि शौहर बीवी को कत्ल कर दिया, तो मेरे को कत्ल करना चाहिए थी, शौहर बीवी को कत्ल कर दिया। शौहर बीवी को कत्ल करते ही बाहर निकल के बीवी के रिश्तेदारों के पास जाके बोल दिया शौहर तुम्हारा जो तुम्हारी बेटी जहाँ पर ब्याही गई थी उसको जो है तुम्हारा दामाद मार दिया। तो वो खानदान वाले आगे वो शौहर को मार दिए, मारते इसके खानदान वाले आगे इन लोगों से लड़ दिए। तो इस तरह से 15-20 कत्ल हो गए, ये खानदान वाले वो खानदान वालों से, वो खानदान वाले ये खानदान वालों से, यानी एक जबान चलाया उन्हें, शौहर बीवी को कत्ल किया, बीवी के खानदान वाले आगे शौहर को कत्ल कर दिए, फिर शौहर के खानदान वाले आगे बीवी के खानदान वालों को कत्ल कर दिए। तो नम्मा भी बोलते इसको, इधर की बात उधर लगाना, उधर की बात इधर लगाना। फिर उन्हें देखे तो जैसे का वैसे बहाल, फिर छोड़ के चले गया उन लोगों को, वहां से निकल के चले गया गुलाम। तो ये यानी जबान हिलाने में कितनी जाने जाया हो गई, और बेकार यानी कोई ऐसा कोई बात ही नहीं, ना शौहर के कोई ऐसे ताल्लुकात थे, ना बीवी के कोई ताल्लुकात थे, महज दोनों को भड़का के आपस में लड़वा दिया। ना सिर्फ उन दोनों को मरवा दिया बल्कि दोनों खानदानों को आपस में लड़वा दिया, दोनों खानदान दोनों तरफ से कई लोग मर गए। तो इस तरह से जबान का इस्तेमाल जो है सोच समझ के करना, इंसान क्या जबान से बोल रहा, तो बोल के बोल क्या बात जबान से निकल रही, क्योंकि जबान अर्ज किया ना पूरी एक इतनी मोटी किताब है जिसका नाम ही गुनाह है जबान, 300 सफ़े की किताब है, याद नहीं है राइटर का नाम, कोई एक वो इमाम जुमा है ईरान के किसी शहर के इमाम जुमा है, तो वो खुतबों में जो है ये जबान के गुनाह को गिनवाए, तो कई खुतबे जब हो गए तो किताब कंपाइल कर दी, बहुत पुरानी किताब है, नहीं मैं समझता हूँ 20 साल पुरानी लिखी हुई है, रिप्रिंट बहुत ज़्यादा हुई, कई बार रिप्रिंट हुई। तो यानी ये जो नम्मामी है, इधर की बात उधर लगाना, उधर की बात इधर लगाना, उसको जादू से ताबीर किया गया, जादू है, जादू के जैसा काम करती है, यानी जादू का जो असर है ये जबान से, अगर कोई शख्स नम्मामी करे यानी सुखन चीनी यानी इधर की बात उधर उधर की बात इधर करे तो इसका इतना असर है। और गीबत के ताल्लुक से कहा जाता है ना, गीबत के ताल्लुक से रिवायत है कि गीबत करने वाले के, मसलन मैं खुदा ना खास्ता किसी की गीबत कर रहा हूँ तो उसके नेक आमाल मुझे मिल जाएंगे, तो एक अच्छा वाक्या इस किताब में नकल करें वो ये कि एक आदमी ख्वाब देखा, ख्वाब देखा कि उसका दोस्त जो है अपने पूरे घर का सामान उसके घर भेज रहा, अपने घर का सामान फ्रिज कूलर जो भी अलमारी वगैरह पूरा इसके घर भेज रहा। ख्वाब देख के बोला क्या ख्वाब है भाई, इन्हें पूरा सामान मेरे घर भेज दे रहा। तो एक दिन जाके उसको बोला भाई मैं ख्वाब देखा, ख्वाब में ये देखा कि आप अपने घर का पूरा सामान मेरे घर भेज दे रहे। इन्हें समझ के आ गई मैं जो गइबत किया था उसने, गइबत करने के नतीजे में पूरे मेरे नेक अमल उधर मुंतकिल हो जा रहे, पूरे नेक अमल मेरे उस तरफ मुंतकिल ट्रांसफ़र हो जा रहे। तो समझ गया शर्माना बोलने के लिए उसको, तो एक दिन हिम्मत करके पहुँच गया उसके घर, पहुँच के बोला भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ आपकी भी, आप किता आपकी गीबत भी करा, आपके ऊपर तोहमत भी लगाए, हो गई गलती माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं बख्श दिया, माफ इंसान अगर माफ़ी चाह रहा तो बख्श देना उसको, ठीक है कोई बात नहीं मैं माफ़ी चाहनी क्या बात है, होता इंसान है गलती हो गई कोई बात नहीं छोड़ दीजिए भूल जाइए उसको, चले गया। जाने के बाद फिर इन्हें साथ देखा कि थोड़े दिनों के बाद फिर उसकी तरफ से हम्माल आए, आगे बोले वो जो सामान भेजे थे ना फिर वो वापस बना रहे, तो फिर वो वापस सामान लेके चला गया, वो सामान फिर वापस लेके उस तरफ से ले गए। तो इस तरह से जो है इंसान अगर किसी की हिम्मत करा तो गैर महसूस तरीके से पता ही नहीं चलता उसके लिए सामान दूसरे की तरफ ट्रांसफर हो जाते। कयामत के दिन भाई मैं तो 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, मैं मजलिस करता था, मैं फलाने काम करता था, कहाँ है उसका हिसाब, मुंतकिल हो गया दूसरे के खाते में चले गया, दूसरे के खाते में मुंतकिल हो गया। आयतुल्लाह हुज्जत का एक वाक़या यहाँ पर नकल कर रहे हैं, बहुत अजीब वाक़या है कि आयतुल्लाह हुज्जत जब आखिरी वक्त आया, बहुत से लोग जो है ऐसे हैं दुनिया में अल्लाह के नेक बंदे जो अपना आखिरी वक्त बतला देते कि फलाने में मरने वाला हूँ। हैदराबाद में भी बुजुर्ग थे, मैं तो करीब से उनको कभी देखा नहीं, लेकिन बहुत से लोगों का यह कहना है कि उनको अपने मरने की खबर दे चुके थे कि फलां टाइम पे मेरा इंतकाल हो जाएगा, तो हत्ता वो सुना ये भी बोल दिए कि मियाँ रात में मेरा इंतकाल हो जाने वाला है, वो अखबार का दफ्तर बंद हो जाता था, तो अभी जाके 2 बजे के बाद उन्होंने कोई न्यूज़ कबूल नहीं करते, तो अभी दिन में जाके आप लोग मेरे इंतकाल की खबर दे दें कि आ जाओ, दूसरे दिन छप जाती ना तो फिर परसों छापना पड़ता खबर, यानी कल लिए तो फिर परसों छपती ना, तो बोलेंगे तो उनके दामाद बोल रहे हैं भाई ये क्या कभी बोल रहे हैं, अगर समझ में नहीं आ रही इनकी बात, बोल रहे मैं कल मरने वाला हूँ आज ही जाके अखबार में दे दो कि मैं कल मेरा इंतकाल होने वाला है, अगर आप कल देंगे तो फिर परसों छपेगा, तो लोगों को आने में उनके जाने वाले पूरे इंडिया में फैले हुए थे, तो उन लोगों को आने में देर हो जाएगी, आज रात आज ही दे दो दिन में जाके, कल आज रात में छप जाता कल सुबह हो जाता रात में मेरा इंतकाल होने वाला है। तो दामाद बोले मेरे समझ में नहीं आ रही ये बात, और वाकई में इसी हुआ रात में इंतकाल हुआ, अखबार के दफ्तर बंद थे नहीं दे सके, दूसरे दिन अखबार में दे दो तीसरे दिन छपा, तो फिर तीसरे दिन वो दिल्ली से इधर उधर से लोग आने थे, वो लोग आए फिर जब जनाजा होगी ऐसा कुछ हुआ, अगर जैसा मेरे को सुनाया गया वो ऐसा सुनाया। तो आयतुल्लाह हुज्जत भी अपने मरने का, आयतुल्लाह हुज्जत जिसका मदरसा है जिसमें हम लोग पढ़े मदरसे हुज्जत, यहाँ कई लोग पढ़े उसमें, आयतुल्लाह खामेनेई साहब पढ़े, आयतुल्लाह हसनज़ादे जमादिया मुनी और शहीद हुसैनी पाकिस्तान की शहीद हुसैनी पढ़े, हसन नसरुल्लाह भी सुना कुछ अरसा वहाँ पे पढ़े हुज्जतिया में, आयतुल्लाह खामेनेई के तालुक से जो यानी जिस कमरे में आयतुल्लाह खामेनेई रहते थे उसको म्यूज़ियम बना दिया, छोटा कमरा छोटा म्यूज़ियम बना दिया उसी में, तो कई बुजुर्ग आए तो कम इस बाई यजदी पढ़े, अपने हैदराबाद में भी कई लोग पढ़े, जितने अभी यहाँ पे मौजूद हैं सभी तकरीबन हुज्जतिया के पढ़े हुए, हरम से बिल्कुल करीब है हज़रत मासूमा के हरम से बिल्कुल पैदल के रास्ते पे मदरसा है, बहुत करीब 80 साल पुराना मदरसा है, आयतुल्लाह हुज्जत उसकी बुनियाद रखे थे इसीलिए उस मदरसे का नाम हुज्जतिया पड़ गया, मदरसे हुज्जतिया उन्हीं के नाम से, उनकी मज़ार भी है अंदर, मस्जिद भी है मस्जिद को लग के कमरा है कमरे में मज़ार है, आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुज्जत वो कमरे। तो उनका जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो बोल दिए कि मैं फलां टाइम पे मर गया, घर में काम चल रहा था उनकी तामीर हो रही थी, मिस्त्रियाँ काम कर रहे हैं मजदूर काम पे लगे हुए, तो बोले आज मिस्त्रियों को मजदूरों को बड़ा डालो भेज डालो आज, तो बोले क्यों आप घर में तामीर हो रही है, क्यों आप भेज देना चाह रहे हैं? तो बोले आज दोपहर में मेरा इंतकाल होने वाला है, आज दोपहर में मेरा इंतकाल होने वाला है, लिहाजा इन लोगों को भेज दो, ये लोग रहेंगे तो अफरा तफरी रहेंगी, भेज दो इन लोगों को। भेज दिए, भेज देने के बाद और 10 दिन या 40 दिन पहले से लोग जो फॉर्म्स लाकर जमा करते थे या बैंक में चेक के जरिए से देते थे या पोस्ट के जरिए से मनी ऑर्डर करते थे, बोले अब कोई चीज़ मैं कबूल नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं कबूल कर लूँगा मेरे पास जमा रहेंगे पैसे, जवाब देना पड़ेगा। तो 40 दिन पहले से या 10 दिन पहले से पैसे लेना बंद कर दिए, पैसे लेना बंद कर दिए। और फिर इंतकाल का वक्त करीब आया तो बोले मेरे जेबों में अगर पैसे वैसे कोई भी चीज़ है तो पूरे खाली कर दो, खाली जेब रहना एकदम, खाली जेब एकदम, कोई चीज़ नहीं रहना मेरे जेब में। उनके दामाद नकल कराइए, उनके दामाद भी बहुत बुलंद हाली में नहीं थे, शेख मुर्तज़ा हायरी आयतुल्लाह अब्दुल करीम हायरी जो हुसैन मियां खूब के बानी हैं उनके बेटे थे, आयतुल्लाह हुज्जत के दामाद थे शेख मुर्तज़ा हायरी, जिनको शेख मुर्तज़ा जाहिद के नाम से जाना जाए, जाहिद यानी फ़कीराना ज़िंदगी गुजारे, ऐसे आम कपड़े आम लिबास पहनते थे, आम गाड़ियों में सफ़र करना कोई शान शौकत नहीं, जबकि बानी हुसैन मियां उनके बेटे थे, उनका नाम शेख मुर्तज़ा जाहिद पड़ गया, यानी जोहद इतना ज़्यादा, जोहद यानी तरके दुनिया कर देना, तरके दुनिया यानी जितनी ज़रूरत है दुनिया से उतना ही लेना, उससे ज़्यादा नहीं लेना। तो वो फरमा रहे हैं कि मैं जब उनके पास गया तो बोले मैं आज जोहर में ख़त्म हो जाने वाला हूँ, मुरतब कलमा पढ़ रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ज़बान पर जारी है, तलखीन अपनी आप खुद पढ़ ले रहे, अपनी तलखीन खुद पढ़ ली है ज़िंदगी में, और जो है तो ये बोले कि आप ये बातें क्यों कर रहे हैं ऐसी, हर जब भी सर्दी का मौसम आता आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है और फिर आप ठीक हो जाते, सर्दी का मौसम गया तबीयत आपकी ठीक हो जाती। तो बोले नहीं मैं इस साल इस सर्दी में बचने वाला नहीं हूँ, ख़त्म हो जाने वाला। और हुआ ये कि उस दिन जोहर में इंतकाल हो गया तो आयतुल्ला अहमद जी मियां जी कह रहे हैं कि मैं मदरसे फैजिया में बैठा हुआ था, जोहर की अजान जैसे हुई, जोहर की अजान के बाद मौज़िन ऐलान करने लगा कि आयतुल्ला हुज्जत मरहूम हो गए, इंतकाल हो गया। सुबह में ही बोल दिए थे कि आज जोहर में मेरा इंतकाल होने वाला, पूरा पैसा खाली। तो हत्ता सराने उनके सदक़े के लिए सुना एक तोमान रखे थे, सदक़े के अनुमान से उनके तकिए के नीचे एक तोमान रखे थे, वही बचा उनके लिए। तो फिर हत्ता घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो दूसरे महाराजे क्या करें, उनका जो उनके शहरी के जो पैसे थे जो तालिब इल्मों में बांटने थे, वो पैसों में से कुछ पूरा शहरिया बांट के थोड़ा सा एक दो महीना चले जैसा उनका घर उनके घर वालों को दे दिए, एक दो महीने का खर्च कि भाई इंतकाल हुआ घर में आपके, ये दो महीने का खर्च, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं, खाली हाथ, यानी ऐसा है एकदम खाली हाथ। तो आखिर वक्त में आयतुल्लाह अहमद मियां जी कह रहे हैं कि मैं आगे शेख मुर्तज़ा जाहिद से पूछा कि भाई वो ज़िंदगी में ये फरमाया करते थे कि फ़लाँ 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 आदमी को मैं माफ़ नहीं करूँगा, ये मेरे ऊपर तुहमत लगाए, तो क्या आखिर वक्त माफ़ कर दिए क्या? तो बोले आखिर वक्त भी मैं उनसे पूछा कि आप वो फ़लाँ 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 आदमी जो आप पर तुहमत लगाए उनको माफ़ कर दिए? तो बोले मैं नहीं माफ़ करूँ, उन्हें बग़ैर सोचे समझे मेरे ताल्लुक़ से ज़बान क्यों हिलाया, मैं नहीं माफ़ कर रहा उसको, क़यामत में हिसाब देना है उसको, क़यामत में हिसाब। अब यहाँ पे हैदराबाद में जो रविश बना ली है वहाँ तो तोहमत, यहाँ पे भी कैसे तोहमत लगाते हैं उलमा में, यानी मुज्तहिदीन पे मिंबरों पे से लान तान करें, ये लोग समझ रहे कि नेक लोगों के ख़िलाफ़ ये लान तान करके ये लोग बचेंगे, खबर नहीं बचने वाले, हिसाब देना पड़ेगा। आप नेक लोगों को लान तान नहीं कर सकते, नेक लोगों के ऊपर गालियाँ, यहाँ पे मुज्तहिदीन को लानत पड़वा रहे ना भाई। आज ही एक बच्चा कह रहा था कि 15 शाबान को यही पास गाँव वाले बच्चे मिलके मलंग के किस्म के यहाँ पे एक जुलूस निकला, यहाँ से मस्जिद रजा से जुलूस निकला, तो वो जुलूस वालों को साइड पे रोक के लानत पर खुमैनी लानत पर सिस्तानी के नारे लगाने, इन लोगों को दबा दिए कोने में, एक तरफ दबा दिए, ये नारे लगा रहे उस तरफ से। तो ये नारे लगाने वाले जबान से नारे लगा रहे ना, जबान को कंट्रोल में नहीं किए हुए, तो ये जो जबान से नारे लगा रहे कल के दिन इसका हिसाब देना है या नहीं, हिसाब देना है? ऐसा नहीं है, नेक लोगों को आप, बुरे लोगों को नहीं बोलना है कुछ भी। कुरान मजीद की खुली भी आयत है, तुम अगर वो लोग जो गैर खुदा खुदा को पुकारते हैं, अगर तुम उनको बुरा भला कहोगे तो ये नादानी में तुम्हारे खुदा को बुरा भला दे, तो उनको नहीं बोलना है, सब नहीं करना है, गाली दुश्मन नहीं देना है उनको। तो ये बसाएंगे नेक लोगों को गालियां देते, आप नेक लोगों को आप गालियां देंगे तो यकीनन उसका जवाब देना पड़ेगा, बच नहीं सकते। यहाँ पे बच जाएंगे आप, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है आपको, लेकिन वहां नहीं बच सकते आप, वहां पे आपको जवाब देना पड़ेगा क्यों नेक लोगों की ताल्लुक से जबान खोले और इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल करे, लानत भेजे नेक लोगों के ऊपर। रिवायत में है कि अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान पर लानत भेजे और वो दूसरा मुसलमान मुस्तहिक के लानत ना हो तो लानत पलट कर खुद इसी पर आती, रिवायत है। खुदा ना खास्ता मैं किसी पर लानत करूँ किसी मुसलमान पर और वो मुस्तहिक नहीं है लानत का, तो वो लानत पलट कर खुद मुझे लगती, मेरे ऊपर आती बोला। तो जबान सोच समझ के खोला करे इंसान, इसीलिए कहा वाहफ़ अलसिनतकुम, तुम अपनी जबानों की हिफाजत करो, और अगर जबान की हिफाजत हो गई तो समझ लो ये बहुत बड़ी कामयाबी है इंसान की, अगर इंसान अपनी जबान की हिफाजत करे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
اللهم صل على محمد و